आईयू रिसेप्शन पर थी और वहां गौरवी जी के डिस्चार्ज से जुड़ी फॉर्मेलिटी पूरी करवा रही थी। वहां खड़े हुए उसकी नज़र आरव पर पड़ी, जो अभी अभी वहां आया था। आरव देखते ही आयु की नज़र उस पर ठहर गई। अंदर आते हुए आरव खुद से बड़बड़ाकर बोला, मैंने कहा था कबीर से सब संभाल ले, लेकिन उसे चैन कहाँ आता है। आई होप सब कुछ जल्दी से खत्म हो जाए और मैं दादी को वापस घर लेकर जा सकूं। वैसे भी दोपहर का टाइम है और उसकी नाइट ड्यूटी होती है, तो हम दोनों का आमना सामना होने के चांसेस जीरो के बराबर है। पर मैं इतना क्यों घबरा रहा हूँ? आरव ने अपने माथे पर हाथ लगाया तो परेशानी से उसके माथे पर कुछ पसीने की बूंदें थीं। आयु की हेल्थ के चलते अयान ने उसकी ड्यूटी फिर से दिन में शिफ्ट कर दी थी। आयु ने जैसे ही आरव को देखा, उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, आप ये कंप्लीट करो, मैं साइन करने के लिए आ जाऊंगी, कहकर वो जल्दी से आरव के पीछे दौड़कर जाने लगी। लेकिन मैडम, सब हो गया है, बस एक साइन ही, बुदबुदाते हुए रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ धीमी हो गई। उसने आयु को आरव के पीछे जाते देखा तो गहरी सांस लेकर छोड़ी और फाइल को वहां रखकर अपने बाकी कामों में लग गई। ये इतना केयरलेस कैसे हो सकता है कि सब कुछ अपने असिस्टेंट पर छोड़कर घर पर बैठ गया? आई नीड टू नो। आयु उसके पीछे जा रही थी, पर फिर वो रुक गई और उसने खुद से कहा, वैसे मुझे क्यों जानना है, इसे जो करना है करने दो। पिछली बार इसने जो भी किया था उसके बाद से ये मुझसे नज़रें मिलाने के लायक नहीं है, ज़बरदस्ती मुझे किस करना और झूठी बीमारी का बहाना बनाना। आयु वहीं पर रुक गई थी। उसने कुछ पल आरव को पीछे से देखा और वापस रिसेप्शन पर आ गई। सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, ये मिसेस खुराना के रूम में भिजवा देना। डॉक्टर आप खुद दे देंगी तो ज़्यादा सही रहेगा, मैं यहाँ रिसेप्शन पर रहती हूँ और अपनी डेस्क छोड़कर नहीं जा सकती, रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और फाइल लेकर जाने लगी। वहां जाते हुए वो खुद से बात कर रही थी, मुझे उसकी शक्ल तक नहीं देखनी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं मिसेस खुराना की केयर करते हुए उनसे ज्यादा ही अटैच हो गई हूँ। मुझे जाते हुए उनसे एक बार मिलना था, बट साथ ही मैं आरव से भी नहीं मिलना चाहती। आयु काफी कंफ्यूज हो रही थी कि वो क्या करे। उसके कदम गौरवी जी के रूम में आकर रुक गए। उसने बाहर से आरव के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, जो कबीर को डांट रहा था, मैं तुमसे कहा था सारा काम देख लेना, मुझे यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है, आरव ने तेज आवाज में कहा। यहाँ आना आपको पसंद नहीं है? ओ रियली, मुझे लगा आप तो यहाँ पर अपना घर बसाना चाहते हैं, कबीर ने सार्कास्टिक वे में जवाब दिया। उसका बदला हुआ बर्ताव देखकर गौरवी जी ने हैरानी से पूछा, कुछ हुआ है क्या आरव? कुछ नहीं हुआ दादी, बस मुझे दोगले लोगों से सख्त नफरत है, जो मुंह पर कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और। सामने अपना होने का दिखावा करते हैं तो पीछे से बदला लेने या गिराने के ख्वाब देखते हैं। अब अगर आपका पूछना पूछाना हो गया हो तो प्लीज़ चलते हैं यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है, आरव ने सख्त लहजे में जवाब दिया। उसने अपनी टाई लूज की और शर्ट के ऊपर का बटन खोल दिया। आरव ऐसा तभी करता था जब उसे सच में सांस लेने में दिक्कत होती थी। उसे वैसे करते देखा कबीर ने फिक्र करते हुए कहा, अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप मुझे बता देते, मैं खुद कर लेता सब कुछ। मैंने तुम्हें बताया था लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आया, तभी तुमने मुझे यहाँ आने के लिए फोर्स किया। अब मुझे कोई बहस नहीं करनी है, जो करना है जल्दी खत्म करो, आरव ने गुस्से में जवाब दिया। वहीं उसकी बातें सुनकर बाहर खड़ी आयु के चेहरे पर भी परेशानी के भाव थे। आरव की बातें सुनकर उसने अपने मन में कहा, क्या इसने अभी अभी ये कहा कि पीछे से बदला लेने या गिराने के ख्वाब देखते हैं? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पर हो भी सकता है। छवि आंटी ने बताया था कि आरव अपने दुश्मनों और दोस्तों की पूरी रिपोर्ट रखता है, तो क्या उसने मेरे बारे में भी सब पता लगा लिया? अगर ऐसा है तो मेरे लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। आयु ने एक वार्ड बॉय को वहां से जाते हुए देखा तो उसे वो फाइल थमाते हुए कहा, इसे अंदर जाकर दे दो। वार्ड बॉय ने उसकी बात पर हामी भरी और फाइल लेकर अंदर चला गया। वहीं आयु तुरंत वहां से निकल गई। आरव की बातें सुनने के बाद आयु को अपने दिल पर एक बोझ सा महसूस हो रहा था। वो खुद से बोली, उसने जो भी कहा वो सब सही ही तो था, फिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? ये बात अलग है कि सारी सच्चाई पता लगने के बाद मेरा उससे बदला लेना मुश्किल हो जाएगा, पर सच तो यही है ना कि उसने जो भी किया उसके बाद से मैं उससे नफरत करती हूँ, उसे नुकसान पहुँचाना चाहती हूँ, उसके साथ वही करना चाहती हूँ जो उसने मेरी बहन के साथ किया, फिर मुझे दिल पर बोझ क्यों लग रहा है? आयु अपने दिल की फीलिंग को समझ नहीं कर पा रही थी। आयु को अपनी इस फीलिंग से निकलने का टाइम भी नहीं मिला कि तभी उसके पास साक्षी का कॉल आ गया। साक्षी ने कॉल पर कहा, कहाँ हो तुम? जानती हूँ, हॉस्पिटल में ही होगी और बिजी भी हो, पर मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, घर पर अकेली भी हूँ, क्या तुम मेरे पास आ जाओगी? ठीक है, मेरा आज का शेड्यूल भी फ्री है, आप एक काम कीजिए, अयान को कॉल करके अपनी हेल्थ अपडेट करके डॉक्टर विजिट करने की रिक्वेस्ट डाल दीजिए, मैं पहुँचती हूँ। आयु ऑन ड्यूटी थी इसलिए डायरेक्ट उससे मिलने नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने सारी बातें समझा दी। वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, वैसे भी मैंने तुम्हारा ही नाम लिखा है, चलो जल्दी आ जाओ, साक्षी ने जवाब दिया। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और कुछ ही देर में आने की बात कहकर कॉल कट कर दिया। चलो अच्छा है, इसी बहाने मैं इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगी, बहुत मुश्किल से इन दिनों में मैंने खुद को थोड़ा मेंटेन किया है, स्ट्रेस लिया तो फिर से वही हालत हो जाएगी,
आयु ने खुद से कहा। वो आयान के केबिन में जा रही थी। जाते वक्त रास्ते में गौरवी जी का रूम था, तो एक नज़र उसने रूम की तरफ देखा। मैं मिसेस खुराना से मिलना चाहती थी, शी इज़ वेरी नाइस, बट मैं वहाँ गई तो शायद आरव अपना गुस्सा मुझ पर निकाले और मेरे लिए चीज़ें और भी मुश्किल बना दे। आई नो आरव की दादी, आप बहुत अच्छी हो, पर आपके पोते ने सही नहीं किया। आयु एक नज़र उस कमरे को देखकर अयान से बात करके साक्षी से मिलने के लिए जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ गौरवी जी को वहां से ले जाते हुए आरव की नज़रें ना चाहते हुए भी आयु को ढूंढ रही थी। वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। जब वो गौरवी जी को लेकर पार्किंग एरिया में पहुंचा तो आयु अपनी गाड़ी के पास खड़ी थी। ये इस वक्त हॉस्पिटल में क्या कर रही है? कहीं इसकी तबीयत फिर से तो ख़राब नहीं हो गई? वैसे भी ये बहुत लापरवाह है, अपना ध्यान नहीं रखती, जब देखो बस इधर उधर घूमना होता है इसे, आरव ने उसकी तरफ देखकर सोचा। आरव अपने कदम आयु की तरफ बढ़ाता, उससे पहले वो गाड़ी में बैठकर वहां से निकल चुकी थी। कबीर ने आरव को आयु को देखते हुए देख लिया था। कबीर आरव के पास जाकर धीमी आवाज़ में बोला, दिल में इतना शोर होना अच्छी बात नहीं होती सर, बात कर लेते तो गलतफहमियां दूर हो जाती, गलतफहमियां अक्सर दूरियों को बढ़ाती हैं। ये गलतफहमी नहीं है कबीर, एक ऐसा सच है जिसे मैं आंख मूंद कर झुठलाना नहीं चाहता। आखिरी बार मैंने उसे छवि सिंघानिया के साथ देखा था और इट्स नॉट अ गुड साइन। मुझे छवि सिंघानिया से जुड़े हर शख्स से नफरत है, शायद हमारी डेस्टिनी में ये दूरियां ही लिखी हैं, कहकर आरव गाड़ी में बैठने लगा। उस दिन हॉस्पिटल में जो भी हुआ था उसने उसके बारे में कबीर को पहले ही बता दिया था। आरव और आयु के बीच की गलतफहमियों को दूर करने की एक आखिरी कोशिश करते हुए ही कबीर ने जिद करके आरव को हॉस्पिटल में बुलाया था, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो चुकी थी।
आप ज्यादा ही सोच रहे हैं सर, अयान उसका फ्रेंड है और छवि सिंघानिया अयान की मॉम, वो एक कैजुअल मीटिंग भी हो सकती थी, पर आपके दिल की नफरत आपको उल्टा सोचने पर मजबूर कर रही है। आई होप देर होने से पहले आपको सब समझ आ जाए। सोचते हुए कबीर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। आरव बैक सीट पर गौरवी जी के साथ बैठा जरूर था, लेकिन उसका सारा ध्यान उस लम्हे पर था जब उसने आयु को गाड़ी में बैठते हुए देखा था। मेरे साथ ही ये क्यों होता है? जिसे मैं बेल से चाहता हूँ वो दूर चला जाता है, और वजह हर बार तुम ही बनती हो छवि सिंघानिया। अफसोस होता है कि तुमने मुझे जन्म दिया। मैं कोसता हूँ हर उस लम्हे को जिसमें मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, तुम्हें चुना और तुमने मुझे धोखा दिया। पता नहीं क्यों मेरे दिल के करीब जो भी इंसान होता है वो तुमसे जुड़ा हुआ क्यों निकलता है। तुम्हारे धोखे के बाद पहली बार किसी लड़की के लिए दिल में एहसास पैदा हुए थे, पर तुमने उसे भी मुझसे छीन लिया। सोचते हुए आरव की आंखें नम हो रही थीं। उसने कार की विंडो खोल दी और बाहर की तरफ देखकर गहरी सांसें लेने लगा। गाड़ी चलाते हुए कबीर ने मिरर में से आरव को देखा तो वो समझ गया कि आयु से ना मिलने की वजह से उसे कितनी तकलीफ महसूस हो रही थी। आरव को जितनी तकलीफ महसूस हो रही थी कुछ वैसा ही हाल आयु का था। पूरे रास्ते वो आरव के बारे में सोचती रही। साक्षी का घर आते ही उसने राहत की सांस ली और अपनी गाड़ी पार्क करके ऊपर जाने लगी। इस वक्त मुझे किसी से बात करने की सख्त जरूरत है। आई होप साक्षी दी मेरे मूड को ठीक कर पाए एंड मंथन घर पर ना हो, बोलते हुए आयु ने बेल बजाई। कुछ ही मिनटों में साक्षी ने घर का दरवाजा खोल दिया। एक्सीडेंट के बाद से वो ज्यादातर टाइम घर पर ही बिताती थी और बेड रेस्ट पर थी। आयु को देखते ही साक्षी मुस्कुराते हुए उसके गले लगी और कहा, मंथन किसी मीटिंग से बाहर गया है, कल सुबह तक वापस आएगा और मुझे अकेला नहीं रहना था। कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में भी कुछ खास काम नहीं था, दिन तक तो रुक जाऊंगी, लेकिन रात को मैं आपके पास नहीं रुक पाऊंगी, आयु ने जवाब दिया। रात को उसकी जहान के फाइट क्लब में ट्रेनिंग सेशन चलता था, इस वजह से वो वहां नहीं रुक सकती थी। वेरी बैड, मैंने सोचा पूरी रात खूब चिल करेंगे और साथ में मूवी देखेंगे, क्या तुम एक दिन के लिए भी अपनी नाइट क्लासेस को छोड़ नहीं सकती? साक्षी ने मुंह बनाकर कहा, जिस पर आयु ने मुस्कुराते हुए नामे सिर हिला दिया। उफ, ये नाइट क्लासेस, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं खुद मुसीबत के पास चली जाती हूँ, और जहान से ट्रेनिंग लेना उसमें से ही एक है, ये सच में बहुत हार्ड है, आयु ने अपने मन में कहा। आयु ने बाकी सबको नाइट क्लासेस का बहाना बनाया था, जबकि सच उससे बिल्कुल परे था।